अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. बोली सच्चिदानंद घन भगवान की. प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे देव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव. रूप रूप
चतुर्भुज धर के पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मी इव पितु मातु स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा
परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय, आनंद के ये परम पावन क्षण, जिन क्षणों का हम लोग परमानंद प्राप्त कर रहे हैं, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन, महापुरुषों के परम तेज, परम सौंदर्य, ज्ञान का सौंदर्य, तपहपूत संतों की छत्रछाया, तपहपूत भगवानों की जो है परम कृपा का हम लोग जो है आनंद लेते हुए कि किस प्रकार से सत्संग का जो हमारे जीवन में स्वरूप दिखाई देता है, जिस क्षण हमको सत्संग की प्राप्ति होती है उस क्षण हमारे संपूर्ण ताप, हमारे संपूर्ण सांसारिक वासनाएं शांत हो जाती हैं, और जब वो परम शांति का अनुभव हम लोग करते हैं तब उन महापुरुषों की कृपा, उन महापुरुषों का आशीर्वाद हमको अनुभव होता है कि किस प्रकार से जो है महापुरुषों ने त्याग, तपस्या और तरह तरह के यत्नों के द्वारा हमको आपको ये बहुमूल्य रत्न, सत्संग रूपी बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं। तो जिस ज्यों ज्यों हम इस गहन सागर में गोते लगाते जाएंगे, त्यों त्यों हमको अपने मनुष्य जीवन के, मनुष्य शरीर के प्राप्त होने का जो है अनुभव होगा कि हमने कितने सुंदर मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अन्यथा तो ये मनुष्य शरीर केवल भोग और भोग के बाद उत्पन्न होने वाले रोग है ना, भोगों से क्या उत्पन्न होता है, रोग। जितने भी आप भोग भोगते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य योनि भोग की योनि नहीं है, मनुष्य योनि तपस्या की योनि है, त्याग की योनि है ना। बाकी सारे हमने 84 लाख योनियों में इन भोगों को, जिन भोगों के पीछे आप पसीना बहाते हुए घूम रहे हैं, है ना, आप जीवन में एक मकान, एक फ्लैट बनाते हैं महाराज, और वो चिड़िया, वो मकड़ी सुबह से शाम तक अनेक घर बनाती है, हर साल नए घर में वो चिड़िया महाराज अपने बच्चों को देती, अपने लिए तो घर ही नहीं बनाता कोई जीव मनुष्य के अलावा, हाँ, इस संसार में केवल मनुष्य अपना घर बनाता, बाकी तो महाराज परमेश्वर के बनाए हुए घरों में आश्रय लेके अपना जीवन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। महाराज देखा है आपने किसी को घर बनाते हुए आज तक, किसी को भगवान ने हाथ पैर ही नहीं दिए, कर्म की स्थिति नहीं दी महाराज। चोंच से चिड़िया अपना घोंसला बनाती, अपने लिए नहीं बनाती चिड़िया, उसमें एक सेकेंड भी महाराज जो है वो अपने रहने के लिए नहीं आती। जब बच्चे महाराज पालने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तब घोंसले का निर्माण करती है, और हर बार नए घोंसले का निर्माण करती है, ऐसा पुरुषार्थ। और हम आप जीवन में एक घर बना लेते हैं तो अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हैं महाराज। तो ये मनुष्य शरीर इन भोगों के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है, अन्यथा भगवान भी हमको इस प्रकार की शक्ति हर मनुष्य को देता है ना। देखो आप 84 लाख योनियों में एक, जो जिस योनि में जिस एक गुण जिसको प्राप्त, सबको प्राप्त है, ऐसा नहीं कि भगवान ने हमारी आपकी तरह सबका भाग्य कोई अलग वहां पर बनाया, वो गुण सबको प्राप्त है, चाहे यहां इंग्लैंड का कुत्ता हो चाहे भारत का हो। सूंघने की शक्ति सबके पास क्या दी गई, दी है कि नहीं दी। तो इसी प्रकार से महाराज चिड़िया चाहे हमारी हो, कौआ चाहे यहां का हो, चाहे अमेरिका का हो, एक ही गुण आपको महाराज सबके अंदर, वही काला रंग, वही महाराज काउ काउ की आवाज, चाहे अमेरिका का कौआ हो और चाहे आपके, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का कौआ इंग्लिश में बोलता है और आपका कौआ जो है हिंदी में बोलता है, और गुजरात का कौआ केम छो बोलता है ना, ऐसा नहीं है, है ना, देखो ध्यान दो। तो महाराज ये केवल मनुष्य योनि है जिसको हमको आपको विशेष रूप से वरदान दिया गया, केवल एकमात्र स्वतंत्रता है तपस्या। जितना जप करो कभी आपका पेट खराब होने वाला होता है कि आप आज हमने 4 माला ज्यादा कर ली तो हमारा हाजमा क्या हो गया है, हाजमा और क्या हो जाता है, हाँ, भूख ज्यादा लगती है कि नहीं, 4 माला ज्यादा कर लो तो आपकी भूख भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी महाराज। तो तपस्या जितनी हम करें उतनी ही थोड़ी है, तो ये शरीर मिला ही तपस्या और त्याग के लिए, दूसरा और कोई कार्य ही नहीं इस शरीर का महाराज। जितने भोग जिनके पीछे ये मनुष्य पागलों की तरह भाग रहा, वो सब हमने एक एक बार नहीं, असंख्य बार अलग अलग योनियों में जाकर महाराज भोगे हैं, स्वयं भोगे,
ऐसा नहीं कि हमको उनको देखना है, ये सब भोग हमने भोगे हैं महाराज, उन योनियों में जाकर भोगे हैं महाराज हैं। तो इसलिए सावधान, शास्त्र कहते हैं उन महापुरुषों की वाणी का सत्कार करें, उन महापुरुषों के तप और त्याग को समझने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने जो है प्राप्त किया, और हमको अमूल्य निधि के रूप में ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये उनके अनुभव हमको जो है प्राप्त हुए। तो बारंबार उन महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता, भगवान के प्रति अपना धन्यवाद नित्य प्रति हमको व्यक्त करना चाहिए। तो स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन महाराज, जो हमको नित्य प्रति शरण देता है इस सत्संग स्थली में, भगवान का, महापुरुषों का बारंबार सुंदर जो है, बारंबार जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके चरणों में कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा। तो वर्तमान में हमारा जो है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद महाराज, भगवान के बाल चपल लीला चरित्र का हम लोग जो है आश्रय लेकर अपने जीवन के परम लक्ष्य को समझने की, चिंतन करने की चेष्टा कर रहे हैं। और कितनी साधारण और नाट्य रूप में है भगवान की लीला, क्या है नाट्य रूप में महाराज हमारे सामने है। बरा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम बैजंतिम चमालाम रंध्रान वेणोधर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रभद कीर्ति कीर्ति। ऐसा सुंदर महाराज मनोहर स्वरूप भगवान का, अष्टवर्षीय भगवान श्री कृष्ण, उनकी मनोहर वृंदावन निवास के समय की झांकी आप अनुभव कर रहे हैं। मोर पंख बरा पीडम है, सुंदर मोर पंख महाराज जिनकी जो है छोटे से बालों के जूड़े के ऊपर, क्योंकि भगवान के जूड़ा कितना बड़ा रहा होगा। हाँ, यही तो भाव है महाराज, इन भावों को ही तो आपको आनंद लेना है ना। तो महाराज बरा पीडम नटवर बपू, और नटवर है महाराज नट में नाटक करने वाला, और वरा वरा श्रेष्ठ नाटककार, उनसे श्रेष्ठ नाटक करने वाला, जरा सोचो कैसा सुंदर नाटक किया कि महाराज 11 वर्ष तक नंद और यशोदा यही समझ नहीं पाए कि ये किसका पुत्र है। ये है नाटक करने की, ये नाट्यशाला है महाराज। ऐसा सुंदर नाटक करो, जब रोने का क्षण आए तो रोने का नाटक करो, और जब हंसने का क्षण आए तो हंसने का नाटक करो। कोई पाबंदी नहीं है कि तुम आध्यात्मिक हो गए हो तो तुमको रोना नहीं है, तुम आध्यात्मिक हो गए हो तो तुमको हंसना नहीं है। जब रोने के क्षण आए, भगवान मैं श्री राम रो रहे हैं महाराज, और किसको देखकर रो रहे हैं, लताओं को, हिरणियों को, हिरणों को महाराज, वनवासियों को देखकर रो रहे हैं। हे मधुकर, हे खगमृग, खगमृगों को देखकर रो रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा। भगवान विलाप कर रहे हैं, उनको देखकर महाराज खगमृग विलाप कर रहे हैं, पेड़ रो रहे हैं। नाटक करना है तो महाराज ऐसा नाटक करो। परम वैराग्यवान भगवान, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज एक साधारण सी मुरली में अमृत भर दिया। क्या भर दिया, देखो एक जड़ चीज में है अमृत भर देने का जो कला, ये नाटक है महाराज, है ना। उन फूलों में महाराज देखो है, उन फूलों के अंदर महाराज सौंदर्य भर दिया उन्होंने, और उसको अपने शरीर में स्वीकार कर लिया, वो झांकी बन गई। क्या बात है ना। तो ऐसा जो ये सुंदर शरीर धारण करके भगवान, क्योंकि वो शरीर को पहले तो स्वीकारता नहीं, और जब स्वीकारता है तो महाराज उसकी साधारण सी क्रियाएं भी जो है कैसी हो जाती हैं, हाँ कहते हैं अतुलनीय हो जाती महाराज। तो हमारा जो विषय चल रहा था भगवान की मुरली के कौन कौन शिकार हुए, है ना, क्योंकि वो शिकारी बड़ा जोरदार है महाराज, और मुरली की तान से आपको हमने कल सुनाया था किसका किसका महाराज भगवान ने शिकार किया है। गायों के हैं, बछड़े बच्चियों के गले में दुग्ध को अवरुद्ध कर दिया महाराज, ये अवस्था है। चैतन्य को, जिनका जिनकी आजीविका ही बछड़ा गाय का बच्चा जो है दुग्ध के पान के समय किसी की सुनता नहीं है महाराज, लेकिन ऐसी अवस्था को भी भगवान की वंशी ने क्या कर दिया, स्थिर बना दिया महाराज। और भगवान के सुंदर स्वरूप का वो महाराज बछड़ा भी बछिया भी क्या करने लगी, चिंतन करने लगा। देखो ऐसी अवस्था, और साधारण की तो बात ही क्या की जाए महाराज, जो रात दिन केवल भोगों को ही अपना आराधन मानते हैं, ऐसी देवांगनाएं देवियां भी महाराज जो है भगवान की रूप रस माधुरी के किसमें चक्र में आ गईं, और भगवान की मुरली की तान ने महाराज उनको भी बेशुद्ध कर दिया जो केवल भोगों में ही बेशुद्ध रहते हैं, है ना। देवताओं का कार्य ही केवल भोगों की ओर निहारना, दूसरा कोई कार्य नहीं महाराज। उनको भी भगवान की बांसुरी ने एक बार अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि भोगों में रचे पचे व्यक्ति का भगवान की ओर निहारना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने स्पष्ट रूप से श्रवण किया होगा, जिस समय सुखदेव जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया, देवता लोग अमृत कलश लेकर आए कि भगवान ये कथामृत हमको दे दो और उसके बदले में राजा परीक्षित को हम अमृत पिला देते हैं। सुखदेव जी ने हंसी उड़ाकर देवताओं को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। अरे देवताओं, क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कहां कांच और कहां मणि। अरे तुम कांच के बदले में क्या लेने आए हो, मणि लेने आए हो। जरा प्रेम से आप लोग भी एक बार बता दो, अगर आपके सामने भागवत की कथा हो और या अमृत का कलश हो जिसके पीते ही आप बिल्कुल 16 साल के नौजवान हो जाओ और वो उम्र आपकी 100-150-200 साल तक बदले नहीं, तो महाराज 16 साल के नौजवान होना पसंद करोगे या 100 साल के बूढ़े होके भागवत सुनना पसंद करोगे, बिल्कुल जरा हृदय से बता दो एक बार। आया बोले यहां तो महाराज अब आपने कह दिया है तो लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्या मिल जाए, जिससे हम फिर से एक बार कितने साल के हो जाएं, क्योंकि ये संसार महाराज बड़ा आकर्षक है, इसमें कभी किसी का वृद्ध होने का मन नहीं करता है महाराज, हमेशा हम युवा बना रहने चाहते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस अमृत को पान करने का तो भाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। तो कहते हैं नदियों के भंवरों का आपने उदाहरण देखा कि नदियों के अंदर महाराज उस बंसी ने चेतना का संचार कर दिया और वो नदियां महाराज भंवरों के द्वारा अपने हृदय के अहलाद को प्रकट करती हुई भगवान के चरणों में महाराज कमलों के हार अर्पित कर रही हैं और अपनी लहरों के द्वारा जो है भगवान के चरणों का आलिंगन कर रही हैं, अपने सर्वस्व का न्योछावर कर रही हैं। ये भगवान की मुरली की विशेषता, और ये तो महाराज साधारण है जो है सखियां एक दूसरे में वार्तालाप के द्वारा इस वेणु गीत में महाराज बताती हैं कि महाराज जरा देखो ये है परमेश्वर, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो हम लोग केवल जो है श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं महाराज वेदों के, लेकिन यहां पर साक्षात वेणु गीत के द्वारा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सखियों के वार्तालाप के रूप में है ना, क्योंकि वो ग्वालिने वो महाराज गौपालिनों के घर की महाराज साधारण सी स्त्रियां, आपकी तरह वेद पढ़ी नहीं थी महाराज, आपकी तरह इंग्लिश पढ़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल फूहड़ गंवार थी, लेकिन ये वेद था उनका, ये साक्षात जो वेद के अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं महाराज, किसको पढ़ रही हैं, कहते हैं दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सहराम गोपई संचारयन्तम् अनुवेण मुदीरयन्तम् पे प्रेम प्रवद्ध उतिता कुसुमा बलिवी सख्युर्यवृद्धात स्वपुषाम्बुद आत पत्रम्। कहते हैं जिस समय एक सखी कहती है कि नदियों की तो ये तो नदियां हैं महाराज, इनकी चलो हमारे वृंदावन की चीज है, लेकिन जरा सिर उठाकर कहते हैं अम्ब ये जो बादल हैं इनकी तरफ जरा निहारो। कहते हैं जिस समय भगवान जो है दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपय, देखो जरा इन बादलों को, जिस समय भगवान अपने संपूर्ण गोप वृंदों के संग संचार यंत मनु वेणु मुदीर यंतम, जब अपनी वेणु की सुंदर तान को छेड़ते हुए इस वृंदावन की पवित्र सुंदर भूमि में पुष्पों और वृक्षों से सजी हुई भूमि में महाराज अपनी गौओं के संग विचरण करते हैं, उस समय कहते हैं प्रेम प्रवद्धा उतिता, कहते हैं उस समय प्रेम से भरे हुए ये बादल जो है वहां पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं महाराज, और घनश्याम के ऊपर वो घनश्याम आकर छाता बन जाते हैं, है ना। कहते हैं कि जब भरत जी जो है जा रहे थे भगवान श्री राम से मिलने, तो उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन बादलों ने आकर भरत जी के ऊपर क्या करनी प्रारंभ कर दी, हाँ, करत जाए छाया जलधि मंद महत अतिवार तस्मग भयउ न राम कह जस भा भरत ही जात। कहते हैं ऐसा रास्ता तो महाराज बादलों ने इस प्रकृति ने राम को भी नहीं दिया, जो सुविधा इस प्रकृति ने किसको प्रदान की, भरत जी को महाराज प्रदान की। जरा देखो केवल भगवान ही नहीं बल्कि ये प्रकृति भगवान के भक्तों की भी क्या करती है, सेवा करती है महाराज, गुलामी करने लगती प्रकृति, क्या करती है, गुलामी करने लगती है। हाँ ध्यान दीजिएगा ये विशेषता है महाराज, है ना। तो तपस्वियों के एक इशारे पे महाराज प्रकृति अपने रुख को ही क्या कर देती है, बदल देती है महाराज। ये शक्ति है आपके अंदर, लेकिन हमने अपनी अपनी शक्ति को किसमें खर्च कर दिया है। बड़ा सुंदर सा शब्द है चिंता, किसमें खर्च कर दिया, इंग्लिश में बोलते हैं हाँ, अरे टेंशन बोलो प्रेम से, रात दिन टेंशन है, चिंता में हमने अपनी सारी शक्ति क्या कर दी, छीन कर दी महाराज। लेकिन यही चिंता यदि चिंतन में परिणित हो गई होती तो ये जो शक्ति आपको यहां दिखाई दे रही है कि भगवान के ऊपर वो बादल जो है क्या है, छाता बने हुए महाराज, और उससे भी सुंदर कहते हैं क्या करते हैं, कहते हैं स्वाबकुशाम बुध आत पत्रम, कहते हैं उसके बाद वो बादल जो है छोटी छोटी नन्ही नन्ही जल की बूंदों की भगवान के ऊपर क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए महाराज, थके हुए भगवान के श्रम को मिटाने के लिए, उनके ग्वाल वालों के श्रम को मिटाने के लिए महाराज वो ऐसे सुंदर सुंदर, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो है सफेद पुष्पों की वर्षा हो रही है ना। ये भगवान का वृंदावन का आनंद है महाराज, जरा देखो है ऐसा शुद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वृंदावन है ये, क्योंकि ये झांकी आपको फिर भगवान के 11 वर्ष के जीवन के बाद कहीं देखने को नहीं मिलेगी महाराज, क्योंकि बाकी दुनिया तो भगवान को क्या करती रही, लड़ाती रही महाराज, और भगवान जो है लड़ाई झगड़ा ही क्या कराते रहे, क्योंकि जहां पर पूर्ण शुद्धता थी महाराज, गोपी ग्वाल भगवान के पशु पक्षी पेड़ वृक्ष नदियां सब बिल्कुल परम शुद्ध अवस्था में होने के कारण भगवान वहां पर मुरली मनोहर बने रहे, और जहां पर महाराज जो है सब कुछ अशांत हो गया, जहां वातावरण अशांत हो गया, मन कलह में व्याप्त हो गया, दुखों में व्याप्त हो गया, वहां भगवान बिचारे सुदर्शन चक्रधारी ही बने रहे। क्यों भाई ऐसा है कि नहीं है, 11 वर्ष केवल परम शुद्ध अवस्था के भगवान, और बाकी सारा जीवन तो महाराज क्रह कलेश में ही जो है भगवान का बीत गया। कहते हैं इस प्रकार से एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे देखो ये तो महाराज इन श्वेत पुष्पों को चढ़ाकर, अपना जल भगवान को चढ़ाकर, ऐसा लगता है इन्होंने अपने जीवन को ही भगवान के ऊपर क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया महाराज, अपने आप को भगवान को दे दिया। ये स्थिति है महाराज चरम, जिसको कहते हैं इसी को आप वेदांत की भाषा में कहते हैं देहाभिमान का त्याग, है ना। वेदांत में इसको क्या कहते हैं, सर्वस्व दान करने का मतलब क्या है, सर्वस्व दान करने का मतलब है देहाभिमान का त्याग, क्योंकि आपका देहाभिमान यदि बना रहा तो आपकी पूजा तपस्या ज्ञान किसी काम का है, क्यों भाई आप ही बताओ, मेरे से मत पूछो, शास्त्र की बात मत मानो, जहां पर देहाभिमान आ जाता है वहां पर ज्ञान पूजा पाठ तपस्या भक्ति सब क्या हो जाती है, केवल श्रम फल कहलाती, फल अवश्य मिलता है लेकिन क्या कहलाती है, ज्ञान से आपको यश कीर्ति मिलेगी लेकिन परमेश्वर नहीं मिलेगा, भक्ति से आपको महाराज दुनिया का प्रचार मिलेगा लेकिन आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा, है ना। मीरा में और तानसेन में क्या अंतर है, एक को रागों का ज्ञान है महाराज, तानसेन रागों के क्या थे, सम्राट, और मीरा भी गाती थी, मीरा क्या लेके गाती थी, एक को राजा अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में स्थान मिला महाराज, संसार में स्थान मिला, श्रेष्ठतम नवरत्नों में गिने गए, लेकिन मीरा ने भी गाया लेकिन उसके गाने में स्थान कहां मिला, देहाभिमान न होने के कारण, अपने आप को बावरी और पागल कहने के कारण महाराज, देहाभिमान को मिटा देने के कारण, अपने आप को न्यौछावर कर देने के कारण मीरा को स्थान मिला परमेश्वर के दरबार में, कहां मिला, हाँ ये अंतर है महाराज। साधारण संसार की चीजें जब आप उसमें श्रेष्ठता हासिल करते हैं तो वहां पर आपको कीर्ति मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और जिन्होंने देहाभिमान को मिटा दिया महाराज, उनको वो प्राप्त होता है जो वास्तविकता में हमको प्राप्त करने के लिए ही, भक्ति कहें, ज्ञान कहें, कुछ भी कहें, योग कह लें, सब एक ही चीज है, कोई चीज अलग नहीं है। तो महाराज वेदांत की भाषा में देहाभिमान का त्याग कह लो, और भक्ति की भाषा में अपने आप के जीवन का न्योछावर कहना कह लो, दोनों एक ही बात है। एक सखी कहती है कि देखो महाराज, कहते हैं हमसे श्रेष्ठ तो महाराज ये गोवर्धन पर्वत है। कितना सुंदर गोवर्धन पर्वत महाराज। कहते हैं अरे गोपियों देखो, क्या
हंतायमद्रिबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयशूय वस कंदर कंदमूलै।
एक सखी दूसरी सखी से कहती है जरा देखो इस गोवर्धन पर्वत को, हंताय मद्रिर्वलः, ये जो सुंदर श्रृंखला है पर्वत की जिसको हम लोग गोवर्धन कहते हैं महाराज, गिरिराज कहते हैं, हरिदास वर्ज्यो, वर शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किया था, नटवर, नटों के जो वर हैं, है ना, नटों के जो राजा, श्रेष्ठतम, नटों में भी जो श्रेष्ठतम है राजा, इसी प्रकार से भगवान के हरिदास वर्ज्यो, जो हरि के भक्तों या दासों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, कहते हैं गिरिराज गोवर्धन जो है भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि इनके ऊपर जब भगवान श्री बलराम जी यानी राम और कृष्ण अपने नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श करके विचरण करते हैं महाराज, तो महाराज इनको परम है स्पर्श प्रमोदा, उस चरण के स्पर्श का इनको क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है महाराज, और उससे इनको जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन करना संभव नहीं है महाराज। स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं कि आपने अपने छोटे बच्चे या अपने घर में उत्पन्न हुए किसी छोटे बच्चे के हाथ पैरों से स्वयं खेला है कि नहीं खेला है। आप उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हैं, आप उसके नन्हे नन्हे पैरों को चूमते हैं महाराज, इतना प्यारा लगता, लेकिन उसके संग शब्द जुड़ा हुआ अपना, किसका है वो, ये काम केवल आपने अपने बच्चे के संग किया, दूसरे बच्चे के संग आपके अंदर वो प्यार नहीं आया महाराज, ध्यान देना। ये देहाभिमान कराता है महाराज, भेद कराता, देहाभिमान मेरा और अपने का भेद कराता है, अपने के प्यार प्रति प्रेम उपड़ता है और गैर के प्रति हमारा प्रेम क्या हो जाता है, शांत हो जाता है महाराज। हाँ ध्यान देना, ये वेणु गीत है, ये किस लिए सुना रहे हैं हम आपको, ये समझने की चेष्टा करें, अभी समझाऊंगा, जरा समाप्त हो जाने दो इसको। ये जो अवस्था है हमारी, अपने के प्रति जो हमारा मोह था, अपने बच्चे के हाथ पैरों को भी हमने चूमा महाराज, लेकिन दूसरे के बच्चे के हाथ पैर ठीक वैसे ही थे, लेकिन उसमें हमको क्यों आनंद नहीं आया, क्योंकि वहां पर अपनत्व आत्मत्व नहीं था महाराज, अपना जो है ममत्व होने के कारण हमने वहां पर देखा, लेकिन यहां पर सर्व जगदाधार सर्व जगत नियंता महाराज छोटे से बाल रूप में विचरण कर रहे हैं। और गोवर्धन पर्वत महाराज क्या चीज है, अरे भाई पर्वत क्या है, पत्थर तो है, पाषाण ही तो है, लेकिन वो पाषाण भी महाराज क्या ले रहा है और आनंद क्या ले रहा है। आपके यहां तो महाराज मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं किसकी बनी हुई, पत्थर की ही तो बनी हुई है, उस पत्थर की मूर्ति में ही तो आप भगवान की क्या करते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो कि नहीं करते, जरा सोचो, ये है चैतन्यता का अनुभव महाराज। पाषाण सबसे कठोर वस्तु महाराज, पत्थर ऐसी जो कठोर वस्तु है, उसके अंदर हम छोटे से कन्हैया की मूर्ति को गढ़कर और उस पत्थर के अंदर महाराज भगवान को क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। ये है सनातन धर्म, ये है सगुण उपासना महाराज। जब पाषाण के अंदर भी हम परम पिता परमेश्वर का आवाहन कर देते हैं, सर्वशक्तिमान का आवाहन कर देते हैं महाराज, और वो साधारण सी दिखने वाली छोटी सी पत्थर की मूर्ति हमारे लिए संपूर्ण शक्तियों का समावेश कर लेती है। जरा देखो, ये सनातन धर्म है हमारा, ये है ज्ञान, और ये है ज्ञान के चक्षु से, विवेक के चक्षु से महाराज उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में प्रवेश कर जाना है ना। देख लो वो पर्वत महाराज भगवान के चरण स्पर्श का आनंद ले रहा है। जरा विचार करो, हमारी जो शास्त्र, हमारे जो धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सिद्धांत है, उसकी गहनता के ऊपर जरा आप विचार कीजिए। दुनिया में और भी धर्मों में मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। हमारे यहां मूर्ति में क्या की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा, कि साक्षात भगवान आज से अब इस मूर्ति में क्या करेंगे। और उसकी प्रक्रिया तो महाराज और सुंदर है, जानते हो आप, जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसको शुद्ध किया जाता है, तालाबों से जल लाया जाता है, खेतों से मिट्टी लाई जाती है महाराज। कौन से खेतों से? जिस मिट्टी को सुअर ने खोदा हो, घोड़े के। हाँ, शुद्धि का तरीका देखो सनातन धर्म में, क्योंकि हमारे यहां मूर्ति भगवान की मूर्ति, वहां भेद हो गया तो फिर भगवान की मूर्ति कैसी रही? सुअर को किसने बनाया, रावण ने या भगवान ने? भगवान ने। सुअर के खोदी हुई मिट्टी लाई जाती है महाराज, घोड़े के अस्तबल जिसको कहा जाता उस अस्तबल की मिट्टी लाई जाती है, हाथी जहां पर रहते हैं उस हाथीशाला की मिट्टी लाई जाती है महाराज, ये सारी गौशाला की मिट्टी, इन सारी मिट्टियों से उस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है महाराज। जितने अनाज हमारे हैं, खाने के चावल है, गेहूं है, सबके अंदर मूर्ति को रखा जाता, तब वो मूर्ति शुद्ध होती। ध्यान देना, ये प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं हो जाती, जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति है उसी से ही भगवान को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है महाराज। नदियों का जल, समुद्र का जल, जिसमें असंख्य नदियों का पानी मिला हुआ, जल मिला हुआ, उस समुद्र के जल से स्नान कराया जाता है, तब जाकर भगवान उस मूर्ति के अंदर क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, और हमारे यहां तो बंबई में है नहीं, लेकिन उत्तर भारत में आपको बताएं कि हमारे यहां जो है रावण यानी दशहरे के दिन, अब तो परंपराएं सब समाप्त हो गई हमारी प्राचीन परंपराएं, जो सर्व आत्मभाव जिसको हम लोग कहते हैं, सर्वात्मा परमेश्वर को भजने के लिए सर्वात्मभाव हमारे साधारण से जीवन में भरा गया। दशहरे में जो है सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मांग को धोबी को बुलाकर, उसकी जो धर्म पत्नी होती है उसकी मांग में सिंदूर भरती, फिर उसकी सिंदूर के, अब उसकी मांग में भरे हुए सिंदूर से अपने मांग को भरती। महाराज जरा सोचो, ये प्रक्रिया है महाराज, है ना, सुअर की खोदी हुई मिट्टी से भगवान की मूर्ति का अभिषेक। हाँ, ध्यान देना, तब भगवान उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। ये हमारे यहां साधारण जीवन की प्रक्रियाएं हैं, सौभाग्यवती रहने के लिए ये करना है। तो जरा विचार करो महाराज, सनातन धर्म की उस गहराई में कभी उतर के आप देखिए, तब आपको भगवान की ये लीलाएं समझ में आएंगी। सुखदेव जी, सखियां कहती हैं, अरे जरा देखो ये पर्वत महाराज दासों में श्रेष्ठ है, है? भगवान के दासों में महाराज भक्तों में श्रेष्ठ है, और भगवान श्री राम यानी बलदाऊ जी और उनके जो है भगवान साक्षात श्री कृष्ण, जब इस पर्वत के ऊपर महाराज अपने नन्हे नन्हे चरणों से अपनी जो है सहगोप है, अपने संपूर्ण गोपगणों के संग महाराज, अपनी बाल सेना के संग जब यहां पर विचरण करते हैं महाराज, तो ये उनकी सेवा में लग जाता है। कैसा दास है? कहते हैं पानीय सूय वश कंदर कंद मूलय, ये जो है तरह तरह के झरनों से इन सब की, गौओं की, बछड़ों की, बछियों की, भगवान की, भगवान के छोटे छोटे गोप वृंदों की प्यास को बुझाता है। उसके बाद हरी हरी घासों से महाराज उन छोटे छोटे गाय बछड़े बछियों और गायों को सुख देता है। उसके बाद महाराज कंदरा देता है, बारिश से बचने, धूप से बचने के लिए इसने कंदराएं निवास स्थान के रूप में बना रखी हैं, और कंदमूल इनको खाने के लिए देता है। ये भगवान की क्या है, उस पर्वत के द्वारा की जा रही सेवा है महाराज। कहती हैं गोपियां धन्य है ये पर्वत, हम तो इसकी बराबरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रात दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कहते हैं यही धन्य है, ऐसे भगवान उस गोवर्धन पर्वत में महाराज अपनी छोटी सी बांस की बांसुरी बजाते हुए विचरण कर रहे हैं। उसके बाद भगवान का एक और सुंदर रूप गोपिकाओं ने गाया, कहते हैं गा गोप कैरनु वनम नयतो रुदार वेणुस्वनैकल पदैस्तनु भ्रत्सु सख्यः अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पास कृत लक्षण योर विचित्रम। कहते हैं सखी, इस सांवरे और गोरे जो किशोर दोनों हैं, इनकी गति बड़ी निराली है महाराज, इनको समझना बड़ा कठिन है। कहते हैं गा गोप कैर नुवनम, नुवन कहते हैं जो गाय लात मारती है दूध दूते समय, तो नोना बांधा जाता है उसके, जो रस्सी बांधी जाती है उसको नोना बोलते हैं महाराज। नुवनम तो भगवान जो है उस गाय के पैर में बांधने वाली छोटी सी रस्सी को तो दोनों लोग क्या कर लेते थे, अपने बालों में लपेट लेते थे महाराज। और दूसरी नयतो रुदार कहते हैं उसके बाद जो है जो एक रस्सी जो भागने वाली गायों को बड़ी सी रस्सी महाराज फेंकी जाती थी पकड़ने के लिए, उसको वो अपने कंधे में टांगे हुए है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपनी साज सज्जा को बनाकर है एक वन से दूसरे वन ग्वाल वालों के संग मधुर संगीत वेणु सुने हैं, वेणु की सुंदर बांसुरी महाराज तान छेड़ते हुए इधर से उधर जिस समय विचरण करते हैं, तो सखियां कहती हैं अन्न की तो बात ही क्या की जाए। पुलकस तरुणाम कहते हैं जी ये बांसुरी है कैसी, जादू भरी बांसुरी महाराज, जादुई बांसुरी है महाराज। कैसी बांसुरी है कहते हैं अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, जो चलने वाले हैं चेतन जो हैं पशु पक्षी, यद्यपि जड़ नदियां कही जाती हैं लेकिन उनका जल भी भागता है। जब भगवान मुरली बजाते हैं महाराज तो पशु पक्षी स्थिर हो जाते हैं, नदियां अपने चलने के स्वभाव को भूल जाती हैं और दूसरी तरफ उल्टा कार्य हो जाता है। पुलकस तरुणाम और पेड़ों में रोमांच हो जाता है महाराज है। यहां तक कि कहा जाता है कि वृंदावन की धरती भी महाराज जिस समय भगवान बांसुरी बजाते थे तो वो भी नृत्य करने लगती थी। ये है ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी तुमको पूरा विश्व, विश्व का मतलब सब, जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है ईश्वर के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान की बांसुरी ऊपर से नीचे तक, क्या बादल क्या नदी क्या देवांगनाएं क्या गोवृंद क्या ग्वालिने महाराज, क्या पेड़ क्या पशु पक्षी क्या नदी, सब को आंदोलित कर देते थे। कौन नटवर वपुः, नाट्यशाला में रंगमंच के ऊपर उतरे हुए दो योद्धा महाराज रणभूमि में विचरण कर रहे महाराज वृंदावन की, सबको हिला के रख दिया महाराज। जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ मन क्या हो गया, जागृत हो गया महाराज। सो रहे हैं हम लोग सुंदर बिस्तर पर, सो रहे हैं भोगों के सुंदर बिस्तर पर महाराज। इस मन को सचेत कर देता है कौन, भगवान का वेणु वादन। सखी कहती है और क्या चमत्कार इस बांसुरी का सुनाया जाए, ऐसी महाराज सुंदर बांसुरी जिसके जादू की कोई सीमा नहीं थी महाराज, लेकिन ये थी केवल उन्हीं के लिए जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था महाराज। कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित, एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णयंतो मिथो गोप्या क्रीडास्तन्मयताम यहु। कहते हैं ऐसे जो वृंदावन चारिण वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं असंख्य लीलाएं महाराज, और गोपिकाएं एक दूसरे को उसका वर्णन करके सुनाती थी, क्योंकि ये भगवान की विशेषता है। आपने देखा पुरुष भगवान की भक्ति करते करते अपने आप को सखी कहने लगते हैं, और गोपिकाएं जब भगवान रास मंडल में कथा आती महाराज कि जिस समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपिकाओं ने एक दूसरे के मध्य में कृष्ण बनकर क्या किया, पढ़ा आपने, नाटक किया महाराज। हर गोपी, एक गोपी जो है क्या बन गई, कालिया नाग बन गई, दूसरी गोपी उसके कंधे में खड़ी हो गई महाराज, पीठ पे खड़ी होकर कृष्ण बन गई है। और मैं तुमको नचती हूं तो स्त्री के अंदर पुरुष भाव आ जाता है, तब भक्ति कहां पहुंच जाती है, अपने अंतिम स्तर पर पहुंच जाती है। जो स्त्री शरीर है वो पुरुष रूप में जो है अपना नाटक करने लगता है, और जो महाराज पुरुष है वो स्त्री बनकर सखी बन जाते हैं, बोलते हैं हम परमेश्वर की क्या है, सखी संप्रदाय बन गया महाराज। तो ये जो स्थितियां हैं ये कब पैदा होती हैं, जब हमारी भक्ति कहां पहुंच जाती है, चरमावस्था में यानी अनन्यता को प्राप्त हो जाती है, तब ऐसी स्थिति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो ये वेणु वादन की जो है आपको लीला सुनाई है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जो ये लीला की है भगवान ने, जो गीता में आपने श्लोक पढ़ा होगा, आपको सुनाते हैं, देखो जरा समझ लो कि ये लीलाएं हम आपको क्यों सुना रहे हैं, है ना। जिस समय आप गीता का पाठ करते हैं, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन आपने पढ़ा होगा, नास्ति बुद्धिरयोक्तस्य नाचायोक्तस्य भावना नाच भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान दीजिएगा, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अयुक्तस्य यानी जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, उसकी बुद्धि भी सोचने समझने में सामर्थ्यवान नहीं होती, और जिसकी बुद्धि सोचने समझने में सामर्थ्यवान नहीं होती, ना चायुक्तस्य भावना, उस दूषित अंतःकरण वाले के अंदर भावना भी नहीं होती, ना च भावयतः शांति, और जहां पर भावना नहीं है वहां महाराज शांति की प्राप्ति संभव नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम, और ऐसे अशांत अंतःकरण को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। हम आपको सुनाते हैं, आप उड़िया बाबा को क्या मानते हो, भक्त मानते हो या वेदांत वाला मानते हो, बोलो, डरते क्यों हो, कोई फांसी की सजा थोड़ी मिलेगी, क्या मानते हो आप, अरे बोलो वेदांत वाला मान। पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के दीक्षा गुरु थे शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी महाराज, और जो ज्ञान गुरु वो मानते थे, किसको मानते थे, उड़िया बाबा को। अब हम आपको उड़िया बाबा की कहानी सुनाते हैं। उड़िया बाबा जो थे महाराज, हरिहर आश्रम में नित्य प्रति आरती में जाया करते थे, और आरती के समय वो हिलते नहीं थे। एक बार जो है कुछ भूखे प्यासे दो एक लोग उनके वहां पर आए, और महाराज इतने भूखे थे कि थर थर कांप रहे थे। ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना च युक्तस्य भावना न च भावयता शांति अशांतस्य कुथा सुखम। जरा अपने आप को पढ़ो इन महापुरुषों के दृष्टांत से, जो हम लोग कहते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, काले हमने पढ़ लिया है और बस हो गया, लेकिन जरा इनका जीवन देखो महाराज। कुछ भूखे प्यासे लोग आए, आरती चल रही थी, तो उड़िया बाबा जी की निगाह उधर गई, उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने इशारे से, चूंकि आरती चल रही थी, उन्होंने इशारा किया कि हमको भूख लगी, जो कभी नियम नहीं तोड़ते थे, वहां से उठते नहीं थे महाराज है, तो इशारा किया उनको हमारे पीछे आओ, और फिर अपने स्थान में ले गए, और महाराज वहां उन्होंने जो कुछ भी उनके पास भोजन का प्रबंध था वो लाके उनके सामने रखा, और बोले इसको जो है खाओ। कहते हैं दो एक लोग जो थे वो, उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया, और उड़िया बाबा सामने बैठ गए, है ना, और सामने बैठकर जब ज्यो वो भोजन करके प्रसन्नता को प्राप्त होते गए, उनकी भूख मिटती गई, त्यों त्यों महाराज उड़िया बाबा के नेत्रों से झरझर 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 क्या बहते रहे, ध्यान देना, क्यों भाई, अब वेदांत समझ में आया, अरे उड़िया बाबा को आप लोग साक्षात वेदांत की मूर्ति मानते हो कि नहीं मानते हो, हैं? ये है वेदांत महाराज, इसको कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयी। अपने के लिए तो तुमने बहुत आंसू बहाए महाराज, लेकिन क्या कभी अनभिज्ञ के लिए भी तुम्हारे अंदर आंसू बहे, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को सर्वत्र देखने की चेष्टा नहीं की है, तुमने केवल पढ़ने की चेष्टा की है, इसका परिणाम है, है? राजा रंतिदेव की कथा आती है, ठीक उड़िया बाबा का उदाहरण है महाराज वहां, जैसे वो अनभिज्ञ लोगों को, ना जाने कौन गरीब बेचारे कहां से आए, उनको जो कुछ उनके पास था उसको खिलाकर महाराज ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण नटवर बपू, छोटे से कृष्ण भगवान क्या खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं महाराज गोपी के हाथ, ऐसा प्रसन्नता का अनुभव, प्राणी मात्र में परमेश्वर देखने की जो ईशावास्यम इदम सर्वम हम कहते हैं, वो स्थिति है यहां पर महाराज, विलाप कर रहे हैं, आंसू भर रहे हैं, प्रेमाश्रु, कौन से अश्रु हैं कि भगवान मेरे हाथ से भोग ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनको भोग लगा, ये ज्ञानी महापुरुषों की अवस्था, नाच अभावयतः शांति अशांतस्य कुतो सुखम, जब तुम्हारे अंदर भावना ही भगवान की नहीं आई तो भगवान तुमको मिलेगा कहां से, समस्या तो महाराज ये है, राजा रंतिदेव का उदाहरण हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में आता, 48 दिन तक भूखे रहने के पश्चात महाराज एक एक करके महाराज शूद्र भी आया, चंडाल भी आया, कुत्ते भी आए और अपना सारा भोजन उनको खिला दिया और फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रसन्नता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस सारे विश्व के दुख ताप को पी जाऊं। राजा रंतिदेव के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो गए महाराज और पूछने लगे, राजा रंतिदेव तुमको क्या चाहिए और जरा बताओ आत्मतृप्त को क्या चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ पूछ रहे हैं, तुम जो मांगो हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। भगवान रंतिदेव कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन के अलावा मुझे कुछ भी। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया, है ना। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये अनुभूतियां हैं, ये जीवन में अनुभव करने की चीजें हैं महाराज। ये वेणु गीत है, गोपिकाएं बेशुद्ध हैं महाराज, उस मुरली की तान जिसको हम लोग कहते हैं ये किसी संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले की तान नहीं है महाराज, ये दिव्य। दिव्य का मतलब समझते हैं आप लोगों को, इंग्लिश बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है महाराज। दिव्य का मतलब डिवाइन, क्या चीज, दिव्य का मतलब अब समझ में आ गया होगा इसकी गहराई, दिव्य शब्द की गहराई समझे, डिवाइन म्यूजिक है ये महाराज। कौन सी म्यूजिक है, ये फिल्मी म्यूजिक नहीं है महाराज, यहाँ तानसेन वाली म्यूजिक नहीं है, ये मीरा का संगीत है। कौन सा संगीत, हाँ ये मीरा का एक तारा है महाराज जो केवल टुन 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 बजता है बस, कोई उसमें दूसरी धुन नहीं निकलती, लेकिन वो एक थोड़ी सी धुन ही महाराज परमेश्वर से एकाकार होने के लिए क्या है, पर्याप्त है महाराज, सक्षम है। तो ये है, ये जो वेणु गीत, ये जो मुरली मनोहर की दिव्य बांसुरी की धुन है, ये किसके लिए दिव्य है, जो पूर्णतया भगवान को क्या हो चुके हैं, उनके लिए नहीं है जिनको महाराज इसमें राग देखने कि किस राग में भगवान ने बजाया, किस धुनि में बजाया, कौन सा संगीत निकाला, उनके लिए ये सब नहीं है महाराज। नहीं तो भगवान वृंदावन में नहीं उस बांसुरी को कहां बजाते, अरे कंस के दरबार में मथुरा में बजाते कि नहीं बजाते। और महाराज कंस भगवान से दुश्मनी भूल जाता और उनको जो है क्या कर लेता, अपने दरबार में नौकरी दे देता कि बढ़िया नौकरी बजाओ और इसके बदले में हम तुमको खूब पैसा देते रहेंगे, होता कि नहीं होता ये, अरे यही करते हैं कि नहीं करते हैं हम जीवन में, यही सब करते हैं महाराज। और इसी जो है अशुद्ध अंतःकरण के रूप में हमारा सारा जीवन हमारे हाथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है महाराज। तो इस प्रकार से ये वेणु गीत है, उसके बाद चीरहरण की बड़ी सुंदर लीला है और सुनने योग्य चीज है महाराज। क्या निर्णय दिया भगवान ने इस चीरहरण की लीला में। और उसके बाद जो है एक कल जो है हमारे पास कल का दिन है और 4 दिन की फिर छुट्टी हम लेंगे आपसे और पुनः 16, 17, 18, 19 4 दिन की छुट्टी के बाद 20 तारीख को पुनः आप लोगों से मिलन होगा, तो फिर आगे की लीलाओं का चिंतन करेंगे। लेकिन कल का एक दिन है और परसों रामनवमी है 15 तारीख को, उस दिन तो श्री राम का ही जो है आनंद हम पूर्णतया लेंगे। तो कल जो है हम लोग चीरहरण और यज्ञ पत्नियों पर जो कृपा भगवान ने की है बहुत ही सुंदर, यानी ये जितनी भी बाल लीलाएं हैं केवल रहस्य उद्घाटन है, पर्दा खोलना, परोक्ष ब्रह्म को अपरोक्ष ब्रह्म किस प्रकार से बनाया जाए, यही बाल लीला का एकमात्र उद्देश्य है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए भगवान ने केवल शुद्ध अंतःकरण वालों के लिए की, बाल लीला को देखने वाले गोप और गोपिकाएं थी महाराज, किसी दूसरे को ये बाल लीलाएं देखने को नहीं मिली। तो पुनः जो है कल हम आपसे मिलेंगे, आज वैसे भजन एक सुनाने का मन था लेकिन समय जो है वो भाग जाता है, तो देखा जाएगा कल अगर मौका मिलेगा तो भगवान के सुंदर भजन का आनंद लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।